अगली सूरत बहुत लाइट है, डेलिकेट है, उसका नाम सुनकर तो आप खुश हो जाएंगे। सूरत जुखरफ। किसको कहते हैं सूरत जुखरफ? सोने को। सोने को नहीं, टू स्लीप नहीं, गोल्ड। किसको सोना अच्छा लगता है? देखा, आप यही समझे कि किसको सोना अच्छा लगता है। आपको दे दूं सोने का मौका, नैप टाइम दे दूं? आप मुझे दे, मैं आपको 2 मिनट में अल्लाह के हुक्म से सो के दिखाऊं। इतने छोटे छोटे चंक्स में सोती हूं मैं, अल्लाह का लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के। और ऐसी भी फ्रेशनेस हो जाती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मुझे किसी की बात सुन के तो मैं लरस के रह गई। कहने लगी, उस्ताजा जब मैं ट्रैफिक लाइट पे खड़ी हुई तो मैं सो गई। और मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला जब ग्रीन लाइट होगी तो मुझे जगा देना। और कहती फिर अल्लाह ने मुझे जगा दिया। मैंने दिल में सोचा अल्लाह ना भी जगाता, पीछे वाले ने जगा दिया। तो ये सोना गोल्ड है, बनाओ को कहते हैं। असल में कोटिंग करना, कोट करते हैं ना, गोल्ड प्लेटेड है। तो इसमें इंशाल्लाह आपके मेरे लिए बहुत खूबसूरत अहकामात है। आइए शुरू करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हम आपके लिए सोना छोड़ते हैं तो आप हमें सोना देना जन्नत का। अब वो जन्नत का सोना कैसा होगा, क्या होगा, उसको छोड़ें, लेकिन बस हम तो ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के लिए अपनी नींद को कम करने वाले बन जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। कसम इस वाजिह किताब की, हमने इसे अरबी जुबान का कुरान बनाया। बार बार ये जुमला सुनकर दिल में ख्वाहिश आती है ना कि अल्लाह हमें भी कुरान की अरबी आए। तो जब भी कोई आयत ऐसे जुमले से शुरू हो ना, कुरान अरबी या कुरान अरबी, तो दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे ये अरबी समझ आ जाए। और ये दुनिया की सबसे प्यारी दौलत आपके लिए बन जाएगी जब आपको कुरान अरबी में समझ आएगा। फरमाए क्यों दिया? ताकि तुम लोग इसे समझो। हाईलाइट करें, हम लोग क्या समझे थे आज तक? कुरान क्यों दिया? ताकि चूमो, इसके तावीज बनाओ, इसकी आयतें लिखकर दीवारों पे लगाओ, बेटी की शादी पे सर से गुजारो। अल्लाह कहते हैं लअल्लकुम ताकिलून। कितने कम लोग हैं जो इस किताब को समझना चाहते हैं और समझते हैं। दर हकीकत ये उम्मुल किताब में सब्त है, हमारे यहाँ बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत से लबरेज किताब। अब क्या हम तुमसे बेजार होकर ये दरसे नसीहत तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि तुम हद से गुजरे हुए हो? ये अपनी जुबान में ऐसे ही है कि अब हम तुम्हें कुरान सिखाना छोड़ दें कि तुम्हें इसको सुनना नहीं है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब इस किताब पे अमल नहीं कर रहे, इस पे गौर नहीं करते, तो क्या अब हम छोड़ दें कुरान का उतरना? ये तो नहीं होगा। देखिए, जितनी मुखालफत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई कुरान के नजूल के मौके पे, अल्लाह ताला गुस्से में आते कहते चलो भाग जाओ, कोई किताब नहीं देनी। फिर 114 सूरतें ना होती, मक्की सूरतें पूरी ना होती, अल्लाह कहता चलो ए नबी छोड़ो, आपको मैं जन्नत देता हूँ, आप इनको छोड़ो इनके हाल में। तो अल्लाह कभी पीयर प्रेशर में नहीं आता। एक बंदा भी ना कुरान को माने, अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है। ये तो वही है जो मान के अल्लाह की नजरों में खूबसूरत हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं हम आपकी बातों में आकर छोड़ते नहीं है। पहले गुजरी हुई कौमों में भी बारह हमने नबी भेजे, कभी ऐसा ना हुआ कि कोई नबी इनके पास आया हो और उन्होंने उसका मजाक न उड़ाया हो। तो लिख लें, आपका भी मजाक उड़ाया जाएगा जब आप इस वही पर अमल करेंगे। फिर जो लोग इन लोगों से बदरजहा ज्यादा ताकतवर थे, इन्हें हमने हलाक कर दिया। पिछली कौमों की मिसालें गुजर चुकी हैं, यानी जो बुली करेगा दीन के ऊपर अमल करने वाले की, अल्लाह उसी से खुद निबट लेगा। अगर तुम इनसे पूछो कि जमीनों आसमान को किसने पैदा किया, तो ये खुद कहेंगे कि इन्हें इसी जबरदस्त तालीम हस्ती ने पैदा किया, वही ना जिसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद की राह पा सको, जिसने खास मकदार में आसमान से पानी उतारा और इसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया। इसी तरह एक रोज तुम जमीन से बरामद किए जाओगे, वही जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों को सवारी बनाया ताकि तुम उसकी पुश्त पर चढ़ो और जब इन पर बैठो तो अपने रब का एहसान याद किया करो। क्या पता चला? गाड़ियों में बैठते ही अल्लाह का एहसान याद करें। किसने ये गाड़ियां दी, किसने ये नेमते दी, किसने लैंड क्रूजर दी और किसने मुझे इतनी ब्रांडेड गाड़ी दी, उसका एहसान अदा करो और कहो सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یہ ہے وہ دعا جس کو ہم میں سے اکثر لوگ سفر کی دعا کے نام سے جانتے بھی اور پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیتوں کے ساتھ شروع میں سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، سواری پہ چڑھتے، سوار ہوتے وہ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ اور اللہ اکبر، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، تو اس کے بعد سفر کو شروع کرتے. تو آج مجھے اور آپ کو بھی پڑھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ گاڑیوں میں بیٹھنے سے نہیں روکتا، اللہ تمہیں اپنی پسند کی گاڑی رکھنے سے نہیں روکتا، لیکن کہتا کیا ہے کہ جب تم ان گاڑیوں میں بیٹھو تو تکبر نہ کرو، گردن نہ کٹ جائے کہ میں تو مرسڈیز میں بیٹھی ہوں، میری گاڑی ایسی، اور چھوٹی گاڑیوں کو ایسے ہی راستے سے ہٹاتا نہ جائے کہ تمہیں کیا حق ہے اس سڑک پہ آنے کا، تمہیں نہیں پتا تمہارے پیچھے اتنی بڑی گاڑی ہے. جب اللہ کے احسان سمجھتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں نا، تو لوگوں کو وہ نعمتیں اور خوبصورت لگتی ہیں. آپ امیجن کیجئے، مرسڈیز گاڑی اور اس میں سے ایک عورت نقاب میں اترتی ہے، یہ ہے سونے پہ سہاگا. ایک مرد نکلتے ہیں اور ان کی اتنی خوبصورت سنت کے مطابق داڑھی ہے، اور بچے نکلتے ہیں اور ان کے اخلاق اتنے پیارے لگتے ہیں. یہ اللہ چاہتا ہے آپ سے. اللہ کو آپ کی مرسڈیز سے کوئی چڑ نہیں، واللہ ہی آپ کو لینڈ کروزر سے کوئی نہیں روکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پہ بیٹھ کر میرے کام کرو. وہ گاڑیاں جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، وہ مسجدوں کے آگے اور مدرسوں کے آگے جا کے رکتی ہیں، لوگوں کے دل بیٹھتے ہیں کہ اچھا پیسے والے ہو کر بھی یہ جماعت کی نمازیں پڑھتے ہیں، پیسے والے ہو کر بھی یہ قرآن کے لیے نکلتے ہیں. تو اللہ ان چیزوں کا اچھا استعمال مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. کبھی کبھی انسان کو چھوٹی گاڑی میں بھی بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ کہ جب بہت دفعہ ہم بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا، تو ہمارے اندر ایک رونت بھی آنے لگتی ہے. بیٹھتے ہی پہلے گاڑی چلانے سے اسی چلاتے ہیں، کبھی کبھی اندھیرے میں پسینے میں تو بیٹھے. تکبر توڑنا ہے اصل یہ مسئلہ ہے. کبھی رکشوں میں بیٹھے، پاکستان جائے نا تو ضرور بیٹھیے گا، ٹانگے میں بیٹھے، رکشے پہ بیٹھے، وہ ایک کے چمچمی ہوتی ہے، چم چم میں بیٹھی کبھی نہیں، لے کے میں نے لوگوں سے اس کا ذکر سنا. سامنے سے موٹر سائیکل لگتا ہے، پیچھے اس کے ہوتا ہے. بیٹھیے کبھی آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھے، چلو سب اپنے رشتے، وہ تو آپ کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں پیش کرنے کو تیار. آپ کہتے نہیں میں رکشے پہ جاؤں، کیوں؟ تکبر ٹوٹے، بڑا نہیں ہونا. کبھی گاڑی میں بیٹھتے ذرا چال بدلنے لگے اور گاڑی کی چابی گھمائیں اور سیل فون ہاتھ میں لیں، تو فوراً استغفار کریں، کیونکہ وما کننا لہو مقرنین. واللہ ہی یہ معجزہ جو روز ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم اتنے خطروں سے نکل کر امن سے اپنی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ سے ہوتے ہوتے بچتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے. تو ہمیشہ آپ کیسے کریں، رات جب اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے نا، ان آیتوں کو یاد کر کے دعا پڑھیے گا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. کہا ہماری طاقت یہ چار پہیوں پہ گھومتی ہوئی گاڑی آپ کو مجھے خیر اور عافیہ سے کہیں اتار دے. پھر فرمائیے، سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ خدا رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کی خبر جب خود ان کو ملتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے، وہ غم سے بھر جاتا ہے. اشارہ کدھر ہے؟ بیٹی کی پیدائش کی طرف. سورہ نحل میں پڑھ چکے کہ خود تو بیٹی کی خبر سن کے اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے غم سے، کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر پاتی. یہ کس کی بات ہے؟ یہ آپ کی بات ہے. لوگ اس آیت پہ ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھو اللہ نے عورتوں کی بےزتی کی ہے، ان کو تو جی زیور پہننے کا شوق ہے اور جھگڑے میں تو اپنی بات ہی نہیں بیان کر سکتی. چلیے دونوں کو لے لیجئے، زیور پہننا بیوقوفی ہے؟ بالکل بھی بیوقوفی نہیں ہے. اللہ نے ایک دھات صرف آپ کے زیورات کے لیے رکھ دی، کوئی بری بات نہیں ہے، ڈونٹ وری. چلے اس کو تو چھوڑ دیں. دوسری بات، کوئی آپ کو کہتا ہے دیکھو باہو فی الحسام غیر مبین، تمہیں پتا ہے تمہارا قرآن جس کو تم بڑے شوق سے پڑھتی ہو، اللہ نے اس میں کہا یہ دیکھو عورتیں جب جھگڑے کا موقع آتا ہے تو اپنی بات ہی نہیں بیان کر پاتی، رو رو کے ہی آدھی بات کرتی، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بھائی، کچھ بولو تو صحیح، کیسے بولوں، پھر رونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیے ذرا اس جملے کو دوسری طرح لیجیے. اللہ کے وہ عورت جو خوب جھگڑالو ہے، خوب تڑ تڑاگے سے جواب دیتی ہے، ٹک ٹک بولتی ہے، اچھا لگتا. یہ تو خوبی عورت کی کہ اس کو بات ہی نہیں کرنی آتی. سے آپ دیکھیے میاں بیوی کا جب معاملہ چلتا ہے اینڈ پہ روتا کون ہے؟ اور اگر آپ کے میاں رونے لگ جائیں آپ کو تو پتا نہیں کیا ہونے لگ جائے. شکر یہ ڈیلی کیسی بتائی. دیکھیے ہر نرم چیز ہوتی ہے نا جھکی ہوئی اچھی لگتی ہے. کوئی بھی گھر میں چیز لاتے ہیں، کوئی شاخ تو کیا کہتے ہیں جھکی ہوئی ہو تو عورت تو خوبصورت لگتی ہے جھکی ہوئی. یا پھر میں بات کروں گی تربیت کے ناطے سے، شاید کسی کو فائدہ ہو. آج تربیت کے انداز میں یہ جھکاؤ نہیں رہا. بظاہر بڑی ہمبل بچیاں بھی اندر سے اتنی سخت اور سٹبن ہوتی ہیں، ترکی بترکی شوہر کو جواب دیتی ہیں. پہلے لوگ تو جواب دیتے تھے بول کے، اب دیتے ہیں لکھ کے. کہاں؟ میسیجز میں. واللہ قطر قطر اندر بڑائی نہیں ہوگی نا. دیکھیں جب تک آپ اپنے شوہر کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھیں گے نا، آپ اس کی عزت نہیں کریں گے. چونکہ آج کل کے شوہر ذرا زیادہ ہی بےچارے آپ کو کمپنی دینے کے لیے برابری پہ لے آتے ہیں، وہ آپ کو شروع سے ہی اتنا لاڈلا بنا لیتے ہیں کہ بس آپ جیسا کوئی کوہیرے کی کنی تو مل گئی ہے نا. اسی سے عورت اور لڑکی، عورت کو بلکہ لڑکی کہوں گی، عورت بننے تک تو کافی سمجھ آ چکی ہوتی ہے. لیکن واللہ آپ سب بچیوں کو نصیحت کروں گی، آپ کو اچھے سے اچھا شوہر ملے یا بگڑے سے بگڑا شوہر ملے، اور اللہ کرے ایسا کبھی نہ ملے، کبھی اپنے آپ کو اس کے برابری پہ لا کے تڑ تڑ نہ بولیں. بولیں گی تو سنیں گی، لکھیں گی تو آگے سے پھر وہ بھی لکھے گا. گھر ٹوٹ جائیں گے آپ کے، کسی جگہ کو آپ شکل دکھانے والی نہیں رہیں گی. جو لوگ اچھی چیزوں کی قدر نہیں کرتے نا، وہ پھر وہ روتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے لیے ضرور کوئی آزمائش لاتا ہے اگلی زندگی میں. ہمارے ہاں بڑے لوگ کہتے تھے کبھی ٹھنڈے دودھ کو پھوکے نہ مارو. میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ آج جو تربیت ہے یا اللہ جانے کیا اندر خنس بھرا ہوا ہے کہ ٹھنڈے دودھ کو پھوکے مارتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہر چیز ہمارے مرضی کی ہو. I don't like this. ایک بات ہے آپ کو نہیں پسند آیا نا، کوئی دھوکا ہو گیا، شرابی کبابی مل گیا، بات بھی سمجھ آتی ہے. عادتوں کا فرق تو وہ تو بھائی بہن کی بھی فرق ہے، دو بہنوں کی فرق ہے. کبھی اپنا اخلاق خراب نہ کریں. عورت کی خوبی کیا ہے کہ وہ اپنی بات بیان نہ ہی کر سکے. کہتے ہیں کہ عورت کے آنسو وہ کام کروا لیتے ہیں جو مرد کے الفاظ نہیں کروا پاتے. کبھی خدا نخواستہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو نا، اب جھگڑے سے مراد وہ ہاتھا پائی نہیں ہے، جسٹ لائک ڈسپیوٹ، جسٹ لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرنس آف اوپینین، آپ خاموش ہو جائیں. یقین کیجیے آپ کا گھر بھی سلامت، آپ کی عزت بھی سلامت. کچھ سال میں وہ شوہر آپ کے گن گائے گا، آپ کے نام کے کلمے پڑے گا، لیکن پہلے آپ اس کا پڑھیں. جو عورتیں گھر جاتے ہی مرد کو خدمت سے جیتی ہیں، پیار سے جیتی ہیں، محبت سے جیتی ہیں، بس ایک دو سال کے بعد وہ شوہر ان کا غلام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. اور جو شروع سے جا کے مقابلے بازیوں پہ آ جاتی ہیں نا، وہ نہیں بستی. پھر کوئی جنت سے ہی آئے گا تو بسائے گا ان کو. تو اپنی بچیوں کو یہی سبق دے کے بھیجیں کہ بیٹا سنو، بیٹا برداشت کرو. اور اندر پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس میں بچیوں کا بھی قصور نہیں ہے، خود پسندی ہے. ہم بڑے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہم عقل مند ہیں، ہم یہ ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر اس کے ساتھ ویسٹ کا لفظ آ گیا، پھر تو بس اور ہی سونے پہ سہاگا ہے. کیا بڑی بات ہے. آپ یہاں جو بچیاں بیٹھی ہیں، اگر آپ کی شادی پاکستان کے کسی گاؤں میں ہو جائے تو نہیں جا کے رہیں گی؟ رہیں گی نا، کیوں نہیں رہیں گی؟ وہاں انسان رہتے ہیں، بجلی جائے گی نا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ پانی میلا ہوگا، تھوڑے دن میں دیکھیں آپ کا اسٹمک ٹھیک ہوگا. لیکن جب آپ اپنے گھر میں خوش ہوں گی نا، آپ کو ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے گی. اور واللہ یہ میں آپ کو سچ کہوں کہ گاؤں کی بچی امریکہ جیسے ایڈوانس ملک میں بھی آ جائے نا، اگر اس کو خوش نہیں رہنا تو وہ خوش نہیں رہے گی. وہ وہاں بیٹھ کے کہے گی مجھے یہاں مٹی نہیں نظر آتی، اس لیے میں یہاں نہیں رہ سکتی. ہمیشہ زندگی میں یہ اصول بنائیں، نرم چیز اپنی جگہ بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھی زبان کو نرم، نہ اس میں ہڈی نہیں ہے، اور دل اس میں بھی ہڈی نہیں ہے. یہ دو ہیومن آرگنز ہیں کہ بون لیس ہیں. زبان بھی نرم رکھیے، دل بھی نرم رکھیں. زبان کی نرمی کیا ہے وہ بعد میں آئے گی، پہلے دل نرم کریں. آپ خود اپنے اوپر لیں، بلکہ آپ میں سے جو 30-40 ایئر سے ماشاءاللہ میرڈ ہے، اللہ آپ کے سب کے شوہروں کو سلامت رکھے، آپ دل سے مانیں اپنے ہسبینڈ کو، دل میں آپ ان کے لیے لائیں جیسے بھی ہیں. آپ ان کی خوبی ڈھونڈیں، آپ کو خوبی نظر آئے گی. اور آپ خامی ڈھونڈیں گی نا تو آپ کو ایک نہیں 10 दिखेंगी, तो इंसान को इंसान समझे। इंशाल्लाह दिल नरम हो गया, आपकी जुबान खुद बखुद उसके लिए नरम होगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें वाकई गैर मुबीन बना दे फिल खिसाम, हमें बात ही ना करनी आए। यही सबक अल्लाह ने आपको मुझे पढ़ा दिए इन आयतों में। उन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के खास बंदे हैं औरतें करार दे लिया, क्या इनके जिस्म की साख्त उन्होंने देखी है? इनकी गवाही लिख ली जाएगी और इन्हें इसकी जवाबदेही करनी होगी। ये कहते अगर खुदाए रहमान चाहता कि हम इनकी इबादत ना करें तो हम कभी इनको ना पूजते। देखिए फिर कह रहे हैं कि अल्लाह ही ने हमें हुक्म दिया कि शिर्क करो, नऊज़ु बिल्लाह, शैतान वाला काम, अपने गलत कामों को दूसरों के नाम पे लगा देना। ये इस मामले की हकीकत को कतई नहीं जानते, महज तीर तुक्के लड़ाते हैं। क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसकी सनद अपनी मलाइका परस्ती के लिए अपने पास रखते हो? नहीं, बल्कि ये कहते हैं हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई नजीर भेजा उसके खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पा लिया और हम इन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करते हैं। हर नबी ने इनसे पूछा क्या तुम इसी तरीके पर चलोगे, ख्वाह मैं तुम्हें उस रास्ते से ज्यादा सही रास्ता बताऊं। हाईलाइट करें, अल्लाह ताला कहते बेस्ट ऑल्टरनेट है तुम्हारे पास सुन्नत की सूरत में, लेकिन तुम गैर मसनून काम ही करते रहोगे सिर्फ बाप दादा का नाम लेकर। बिदात में पड़े रहोगे सिर्फ इसलिए कि दादी के वक्त से ये तरीका चल रहा है? तो नहीं, अच्छी चीज मिले तो बुरी को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम भेजे गए हम उसके काफिर है। आखिरकार हमने उनकी खबर ले डाली और देख लो कि चुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। अब कुछ बातें अंबिया कराम के नाते से। वह इस काल इब्राहिम उलियबी ही व कौमी, याद करो वो वक्त जबकि इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा तुम जिनकी बंदगी करते हो मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक सिर्फ उससे है जिसने मुझे पैदा किया, वही मेरी रहनुमाई करेगा। दुआ करें हम भी यही जुमला सीख लें कि मैं तो अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ती हूँ। और इब्राहिम यही कलमा अपने पीछे अपनी औलाद में छोड़ गए ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। इसके बावजूद जब ये लोग दूसरों की बंदगी करने लगे तो मैंने इनको मिटा तो नहीं दिया बल्कि मैंने और इनके बाप दादा को मताए हयात देता रहा। वाहिद मुतकल्लिम के सीखे कुछ और है पढ़ के, अल्लाह अपनी तरफ ले रहे। हम कहते हैं ना अल्लाह करता है, यहाँ अल्लाह ताला करे मैं करता हूँ। यहां से पता चलता है कि बल हुआ कलाम अल्लाह, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई अपनी बात सुनाने लग जाऊं तो आपको लगेगा ना कि बड़ा एक पर्सनल सा अंदाज हो गया, तो ये आयतें कुरान की बड़ी पर्सनल है कि वाकई कुरान अल्लाह ने नाजिल किया कि अपनी तरफ ये बातें अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया। मगर जब हक इनके पास आ गया तो उन्होंने कह दिया ये तो जादू है और हम इसको मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं ये कुरान दोनों शहरों के बड़े आदमियों से किसी पर नाजिल क्यों ना किया गया, यानी मक्का और ताइफ। कुफार को अल्लाह के नबी पर जो इतराज था उसमें एक ये भी था कि आप अमीर क्यों नहीं है, आप बहुत ज्यादा बड़े सरदार बेटे क्यों नहीं है? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बड़े शहरों यानी अपने आप को बड़ा समझने वाले नबी सल्लम को छोटा समझते हैं। हालांकि क्या तेरे रब की रहमत ये लोग तकसीम करते हैं? दुनिया की जिंदगी में इनकी गुजर बसर के जराए तो हमने इनके दरमियान तकसीम किए हैं और इनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरे लोगों पर हमने कई लिहाज से फौकियत दी ताकि ये एक दूसरे से खिदमत लें, और तेरे रब की रहमत यानी नबूवत इस दौलत से ज्यादा कीमती है जो इनके रईस समेट रहे हैं। इस आयत में एक बहुत बड़े सवाल का जवाब है। आपके बच्चे भी अक्सर आपसे पूछते होंगे कि अम्मी कुछ लोग दुनिया में इतने गरीब क्यों हैं, कुछ को पानी भी नहीं मिलता, है ना दुनिया में फर्क? और हकीकत है कि ये इस दुनिया में डिफरेंट लोग हैं, कोई बहुत अमीर है बहुत गरीब है। तो यहां इसकी वजह बताई गई कि दुनिया का निजाम चले, अगर गरीब लोग ना होते तो सड़कें साफ करने का काम कौन लेता, गटर कौन साफ करता? अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, दुनिया में किसी का गटर साफ करना उसके हकीर होने की अलामत नहीं, और किसी का ऑफिस में बैठ के हुक्म चलाना उसके अच्छे होने की अलामत नहीं। ये दुनिया एक कॉस्ट्यूम पार्टी है, हम सब ने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। मौत की सूरत में जब कॉस्ट्यूम उतरेगा असल उस दिन दिखेगी, और असल चीज हमारी रूह की है जिस्म की नहीं है। इसलिए दुनिया के निजाम को चलाने का ये खूबसूरत तरीका है, कामों को डेलीगेट किया। इसी तरह याद रखिए उम्मत मुस्लिमा को आज अपने काम को पहचानना पड़ेगा। अगर आप उम्मत मुस्लिमा में के इस जोड़ में अगर सिर्फ सफाई का काम अपने जिम्मे ले सकते हैं मोस्ट वेलकम, कैंटीन ले सकते हैं, मोस्ट वेलकम। पढ़ाने का ले सकते हैं, सबसे अच्छा। आप अगर किसी रिसेप्शन में बैठ के रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं, वेरी गुड। ऑफिस में बैठे, वेरी गुड। लेकिन आप में से कोई एक दूसरे पर बड़ा नहीं है। मत सोचे जो स्टेज पे बैठ के आपसे बात कर रहा है वो दूसरों से आला है। ये तो एक जरूरत के तहत हम लोग जहाँ के बैठ जाते हैं ना, मजबूरी है। अल्लाह को पता है दिल किसका बड़ा है, कुर्बानी किसने ज्यादा दी और कौन मुश्किलात में आता है। और मुझे तो हमेशा अपना काम, अपना हिस्सा सबसे छोटा लगता है जब मैं दूसरों के एफर्ट्स देखती हूँ। तो वो कभी किसी को बड़ा ना समझे। बड़ा वो है जिसको अल्लाह बड़ा बना दे। अपनी खूबी ढूंढे और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू मेरे लिए आसान कर दे। इसके बाद मुसलमानों को एक बहुत बड़ी आजमाइश से जो अल्लाह ने बचाया उसका जिक्र है, हाईलाइट करें, बहुत ही दिलचस्प आयत है। वलौ लन यकूनन्ना सुम्मतन वाहिदा, अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे। अल्लाह की बात को सुन देखिए, या कुफर कहना था, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर सारे लोग काफिर हो जाएंगे, लेकिन मतलब यही है। गोया कि अल्लाह कुफर पे लाने का नाम भी नहीं लेना चाहता किसी का। मतलब यह कि अगर इस बात का डर ना होता कि सारे मुसलमान काफिर ही ना हो जाएं, तो हम खुदाए रहमान से कुफर करने वालों के घरों की छतें और उनकी सीढ़ियां जिनसे वो अपने बाला खानों पर चढ़ते, और इनके दरवाजे और उनके तख्त जिन पर वो तकिए लगाकर बैठते हैं, सब चांदी और सोने के बना देते। ये तो महज हयाते दुनिया की मता है, और आखिरत तेरे रब के हाँ सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। समझ आई? आप इमेजिन कीजिए, हम अमेरिका में रहते हैं, कोई भी कम्युनिटी, ये एल्फोर्डा ही लेते, कोई भी शहर सोच ले इलाका, ये घर मिट्टी का, चूने का, पत्थर, ब्रिक्स होम, नीचे लिखा हुआ है मोहम्मद नाम के एक शख्स का। माशाल्लाह, आप थोड़ा सा आगे के दूसरा घर आपने देखा तो वेरी नाइस, गोल्डन, मेड ऑफ गोल्ड। ये क्या ऊपर कवर है? नहीं, ये सोने का है। छत देखी तो सिल्वर की, गोल्डन सिल्वर घर है, और पता चला असल सोने का है, और नीचे लिखा हुआ है जेम या कोई और नाम सोच लें, पता चल गया ये नॉन मुस्लिम का। आगे दो घर के इसी तरह हो, कोई घर सोने का तो कोई मिट्टी का। पता क्या चला? सारे सोने के घर गैर मुस्लिमों के हैं और मिट्टी के घर मुसलमानों के हैं। इमेजिन तो कीजिए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता तो ईमान की दौलत जमा करना और भी मुश्किल हो जाता। लोग दुनिया के सोने के घर पाने के लिए कुफर ले लेते हैं, और मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग तो आज मिट्टी के घरों पे अपना ईमान बेच के अल्लाह को नाराज कर लेते हैं। अगर ये घर जो मिट्टी और चूने का ही है ना, कितना भी सजा ले अंदर तो मिट्टी है, जब मलबा बनेगा तो असल दिखेगी। और कभी घर तोड़े तो सोना चांदी तो नहीं अंदर निकलता, मलबा ही निकलता है। आप सोचिए कि जब हम इन मट्टी चूने के घरों को अल्लाह की नाफरमानी के साथ अगर लेने को तैयार हैं, तो अगर दुनिया में अल्लाह इतनी बड़ी आजमाइश डालता तो सारी नस्लें मुसलमानों की कुफर पे चली जाती, और वल्लाह ही अल्लाह के लिए मुमकिन है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहां तो नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, दिल की गहराई से कहें। फिर तो लोग और बातें करते कि वो मुसलमानों तुम्हें मिला ही क्या है, मिट्टी के घर, देखो हम कितने खुश हैं, हमारा रब खुश है तभी तो दे रहा है। लेकिन अल्लाह ने ये काम जन्नत में कर दिया है। हदीस में आता है कि जन्नत अदन के घर सोने और चांदी के होंगे, एक ईंट सोने की, एक चांदी की, और लूलू मोती पल्स के घर होंगे। मैंने जब वो हदीसें पढ़ी और पढ़ाई भी है, जन्नत का बयान आप भी पढ़ लें, आपको उसमें जन्नत के घरों के टॉपिक में ये टॉपिक दिखेगा। यकीन करें, जहन में एक फैंटेसी लैंड आती है। बचपन में हम वो पढ़ते थे ना, जो सिंड्रीला की कहानियां और जो उल्टी ऐसी चीजें जिससे तसव्वुर आता है, तो मैं जब वो घरों का किस्सा पढ़ती हूँ तो मैं सोचती जन्नत कैसी होगी। और मुझे एक पर्सनल चीज याद आ गई, कुछ साल पहले यानी जब मैं नॉर्वे में थी तो सर्दियां थी, चारों तरफ बर्फ थी, और बर्फ भी ऐसी होती है कि वो आपने अगर देखी हो तो आपको पता चलेगा, क्रिस्टल नहीं होती, दूधिया होती है। बहुत दिन के बाद सूरज निकला। अब वो जो बर्फ के ऊपर सूरज पड़ता है ना, तो जो साथी देखते हैं वही जान सकते हैं उसका हुसन क्या होता है। बर्फ के अंदर से क्रिस्टल की चमक आ रही होती है। तो मेरा एक दर्स था, अभी भी मुझे याद है, वो सब गलियां मैं कहाँ गई, तो पूरी रोड्स भी बर्फ वाली होती है, रोड्स को वो क्लियर कर देते हैं प्लेन, लेकिन इर्द गिर्द बर्फ है। तो जो ही हम एक वो कम्युनिटी के अंदर घुसे तो वल्ला ही मुझे ऐसे लगा सारे चीनी के घर हैं, ऐसे लगता है जैसे चीनी के घर बने हुए, और ऊपर से सूरज पड़ रहा है, तो मुझे यादें याद आई कि फिर आज भी मैं जन्नत अदन सोचती तो मेरे में वही नक्शा जाता है कि ऐसी होगी जन्नत। आप सोचें ना, बड़े बड़े मोतियों के घर, चांदी के, गोल्ड के, सिल्वर के, और उस घर के बाहर आपकी नेम प्लेट लगी है, क्या नहीं लेना? आप सोचिए, वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयात दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। ये तो महज दुनिया की जिंदगी की मता है, आखिरत तेरे रब क्या सिर्फ मुत्तकीन के लिए। तो तकवा इख्तियार करना है। आज दुनिया में बचते बचाते डरते डराते गुजर जाएंगे, अल्लाह वहां खैर देगा। चलिए अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत में अच्छा सा घर देना, खूब सजा हुआ। फिर हम एक दूसरे की दावत करेंगे, आप आएंगे मेरे घर, मुझे बुलाएंगे, मुझे वहां नहीं बुलाएंगे आप, क्योंकि वहां लोग दर्स नहीं सुनेंगे, वहां किसी को होश ही नहीं होगी, आपने शॉपिंग में मसरूफ होना है, टू बिजी। बस लोग कहते हैं ना, हाय मर्दों को अल्लाह ने दो बीवियां दे दी, हमें क्या होगा। तो मेरी किसी से बात, उन्होंने कहा बीवियों को होश कहाँ होनी है, वो तो मॉल्स में ही घूमती रहेंगी, वो तो शुक्र करेंगी हस्बैंड बिजी हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें। यकीन कीजिए, जन्नत में इतना कुछ है आपके लिए कि आपको परवाह ही नहीं रहेगी। दुआ करें बस एक दफा हम जन्नत में पहुंच जाए। डेट देखें आज की, 7/11, ये क्या बन गया है, 2015, ये डेट लिख लें और जन्नत में जाकर हम इस वक्त को याद करेंगे, टाइम भी देख लें, और हम अल्लाह से कहें, अल्लाह हमने वहां बैठ के दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत बिगैरी हिसाब, ए अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत दे दे। अगली आयतों में कीमत जन्नत की, वमन याशअन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू क़रीन। जो शख्स रहमान के जिक्र से गफलत बरतता है, हम इस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो इसका रफीक बन जाता है। ये शयातीन ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोकते हैं और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। आखिरकार जब ये शख्स हमारे यहाँ पहुंचेगा तो इस अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती, तू तो बदतरीन साथी निकला। इस वक्त इन लोगों से कहा जाएगा कि जब तुम जुल्म कर चुके तो आज से बात तुम्हारे लिए कुछ भी नफे वाली नहीं, कि तुम और तुम्हारे शयातीन अजाब में मुश्तरिक हैं। क्या बताया, तगाफुल नहीं जाकिर बनना है। बहुत बड़ी बात है, जितना जिक्र से, कुरान जिक्र है, नमाज जिक्र है, अल्लाह की याद से दूर होंगे ना, शैतान मुसल्लत होगा। जितना नेकियां करेंगे, नेकियां करनी आसान होंगी। फिर इसी की गवाही ले ले, रातों की नेकियां ये दिन के सफर को आसान कर रही है ना आजकल। और मैं तो दिल से दुआ कर रही हूं कि अल्लाह हमें रमजान के बाद भी इसी तरह अपनी रातें बसर करने वाला बना दे कि क्याम वक़ूदन, और बैठे उठते अल्लाह को याद करें, ताकि उस दिन में बड़ी बरकत हो। जिस दिन से ये ताक रातें और ये आखिरी अशरा शुरू हुआ ना, आप नहीं फील कर सकते क्योंकि पढ़ाने वाले को ज्यादा समझ आ रहा होता है। मैं इसका एक अजीब सा असर देख रही हूं अपने अंदर भी और आपके अंदर भी देखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच के आ जाते हैं ना नींद से, वल्लाही वो अपने अंदर एनर्जी फील करेंगे। तो अपने लिए अमल रखिए, जिक्र से दूर नहीं होना, कुरान से दूर नहीं होना, नमाज से दूर नहीं होना, अल्लाह की याद से दूर नहीं होना। और जो दूर हो जाए उनका हाल क्या है, तो सुन लीजिए, अब कैद भी तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों और सरी गुमराही में पड़े हुए लोगों को राह दिखाओगे। अब तो हमें इनको सजा देनी है, ख्वाह हम तुम्हें दुनिया से उठा लें या तुम को आंखों से इनका वो अंजाम दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा किया है। हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। तुम बहरहाल इस किताब को मजबूती से थामे रखो जो वही के जरिए से तुम्हारे पास भेजी गई, और याद रखो, इन्नका ला सिराते मुस्तकीम, तुम तो यकीनन सीधे रास्ते पे हो। हाईलाइट करेंगे, फस्तमसिक बिल्लज़ी हुवा इलैक, मुझे और आपको भी यही कहा गया, इस किताब को मजबूत थाम लो दोनों हाथों से। ईद की छुट्टियों में ये किताब हाथों से फिसल ना जाए, दुआ करें अपने लिए। अगर आज ये किताब मेरे हाथ में आ गई, अल्लाह इसको मेरे हाथ में ही रखे आखिरी दिन तक। हकीकत यह कि यह किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है, और अन करीब तुम लोगों को इसकी जवाबदेही करनी होगी। हाईलाइट करें, कितने लोग हैं जो इस किताब को पकड़ना अपने लिए कॉर्नर समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज यही कह रही है आपको, दिस इज एन ऑनर फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली और तुम्हारे खानदान के लिए। मुझे इस आयत को पढ़ के ऐसे लगा जैसे आप में से कोई ऐसा है जो फर्स्ट पर्सन है अपनी फैमिली का जो कुरान सीख रहा है। कोई आप में से ऐसा कि आपको लगे कि माशाल्लाह, तो फिर ये आपके लिए आयत। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो अपनी कौम अपने खानदान के लिए खैर का जरिया बनेंगे इंशाल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह हमें इस किताब की इज्जत दे दे। और अन करीब तुम लोगों से फिर जवाबदेही भी होगी, हर नेमत का हिसाब तो देना पड़ेगा। तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे थे इन सब से पूछ देखो, क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा कुछ दूसरे माबूद भी मुकर्रर किए थे कि इनकी बंदगी की जाए। हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सल्तनत वालों के पास भेजा और उसने जाकर कहा मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। फिर जब उसने हमारी निशानियों इनके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगे। हम एक पर एक ऐसी निशानी इनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़ कर थी और हमने इनको अजाब में धर लिया कि वो अपनी रविश से बाज आए। हर अजाब के मौके पर वो कहते ऐ साहिर, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है इसकी बिना पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। वही मेंटेलिटी जो आज भी है, दुआ करनी मौलवी साहब को बुला लो, खत्म पढ़ाना मौलवी साहब को बुला लो, और बच्चे का निकाह पढ़ाना मौलवी साहब को बुला लो। भाई ये बताओ कि तुम इन मौलवी साहब बेचारों की बात खुद कितनी मानते हो, खुद कितनी मानते हो, और उन बेचारों को हर दफा बुलाते हो। इससे पता चलता है कि लोग दीनदारों के बगैर जी नहीं सकते, ना उनके बच्चों के निकाह होंगे, ना जनाजे पढ़े जाएंगे, और बात जगहों में तो बच्चों के कान में अजान के लिए भी मौलवी साहब को बुलाया जाता है। तो अल्लाह ताला यही बात बता रहे हैं इधर कि देखो वो लोग दुआ भी खुद नहीं करते थे। तो याद रखिए, दुआएं हमने खुद मांगनी है, अपने आप को अल्लाह से जोड़ना है तो डायरेक्ट डायलिंग कीजिए, दूसरे भी आपके लिए मांगे, लेकिन जब आप खुद मांगेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। अब हुआ क्या, जब हजरत मूसा उनके लिए दुआ कर देते तो क्या होता, मगर जो ही हम इन पर से अजाब हटा देते तो वह अपनी बात से फिर जाते। एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा लोगो, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे से नहीं बह रही? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता मैं बेहतर हूं या ये शख्स यानी मूसा जो जलील और हकीर है नऊज़ु बिल्लाह, और अपनी बात भी खोलकर बयान नहीं करता? कितनी शेहियां बिगाड़ रहे ना फिरौन। क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता इसकी अर्दली में ना आया। मुझे अपनी एक स्टूडेंट हमारी याद आती है, बड़ी उम्र की थी, तो जब मैं क्लास में ये पढ़ा रही थी तो वो भी बैठी हुई थी, तो ये सारी हम बातें पढ़ी तो एकदम बोली क्लास में, कहती कितना छिछोरा था फिरौन। कम से कम 15 साल पुरानी बात है, अब भी मैं जब ये आयतें पढ़ाती मुझे उनकी बात कहती कितना छिछोरपन था उसमें तो शोएमर। लेकिन वो तो बड़ा बनना चाहा, लेकिन अल्लाह कहते हैं हुआ क्या, ऐसा कौन करता है जो अपनी कौम को हल्का जानता है? इसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने इसकी इताअत की, दर हकीकत वो थे ही फासिक लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया, हाईलाइट कर लें, हमारे पास जुमले अल्लाह को गुस्सा दिलवा देते हैं, अल्लाह का गजब टूटता है, तो हमने इनसे इंतकाम लिया और इनको इकट्ठा गर्क कर दिया और बाद वालों के लिए पेश रो और नमूना इबरत बनाकर रख दिया। और जूं ही कि इब्ने मरियम की मिसाल दी गई तुम्हारी कौम के लोगों ने इस पर गुल मचा दिया और कहने लगे हमारे माबूद अच्छे हैं या वो, ये मिसाल जो तुम्हारे सामने महज कज बहसी के लिए लाए हैं, हकीकत ये कि ये हैं ही झगड़ालू लोग। इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ न थे कि एक बंदा था जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए उसे अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा करें जो जमीन में तुम्हारे जानशीन हो, और वो यानी इब्ने मरियम दरअसल क्यामत की एक निशानी है, इशारा हजरत ईसा के दोबारा आने का दुनिया में। बस तुम इसमें शक न करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है, ऐसा ना हो कि शैतान तुमको इससे रोक ले कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لیے ہوئے آئے تو اس نے کہا، میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، حقیقت یہ کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ بس اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہائی لائٹ کیجئے گا اس آیت کو۔ قیامت کے دھماکے اور قیامت کے ہنگامے دوستوں کو دوستوں سے بے نیاز کر دیں گے۔ سوچئے، اپنی بیسٹ فرینڈ کا نام لکھئے ان آیتوں کے نیچے، جس کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ وہ آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ہے دنیا کے کاموں میں، خاص طور پہ جہاں جو آپ کو ان کی ضرورت پڑی وہ آ گئی۔ قیامت کے دن اگر اس دوستی میں دین کا رنگ نہیں شامل ہوگا نا، تو وہ آپ سے بے نیاز ہو جائیں گی۔ یہ اللہ نے بتایا۔ دیکھیے، جب ہم پہ خود کو مصیبت پڑتی ہے تو ہم لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں رہتے۔ ہم دوسروں کی مدد کب کرتے ہیں؟ جب ہم خود بھی مدد کرنے کے قابل ہوں۔ آپ خود سر باندھ کے لیٹے ہوئے سر درد سے یا بخار سے، تو آپ کسی کو چائے کیسے بنا کے دیں گے؟ قیامت کے ہنگامے دوسروں کو اتنا پریشان کر دیں گے اپنے بارے میں کہ ان کو دوسروں کی بات بھولے گی۔ صرف ایک رشتہ وہاں یاد رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ اِلَّا الْمُتَّقِينَ، تقویٰ کی بنیاد پہ قائم ہوئی دوستیاں، دین کے نام پہ دوستیاں، اسلام کی دوستیاں قائم رہیں گی، کیونکہ سب کا کامن کاز تھا۔ یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، وہ تو سب دنیا میں گزر گئے۔ دعا کریں یہ پکار ہمیں بھی ملے قیامت کے دن۔ حکم کیا ہوگا؟ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ امیجن کیجئے کیسے خوش کیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساگر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ اور اب ان سے کہا جائے گا، اللہ اکبر، وانتم فیہا خالدون، اب تم ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہارے لیے یہاں بکثرت میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے۔ سوچیے اپنے اور اپنے شوہر کے بارے میں، لکھیے اپنے ہسبینڈ کا نام ادھر۔ نیک بچیوں کو ہمیشہ اپنے شوہروں سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ اتنے نیک نہ بھی ہوں ان کے گمان کے مطابق، وہ اپنی محبت کی بنیاد پہ ان کو نیکیوں کی طرف بلا لیتی ہیں۔ دعا کریں کہ ہمارے شوہر ہی ہمارے ساتھ جنت میں بھی جائیں اور دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ جو نام اللہ نے ہمیں دے دیا نا، یہ کبھی نہ بدلے۔ یہ ویسٹ کا سٹائل ہے کہ نہ بدلو۔ 3 مہینے تک ٹائم ہوتا ہے نا چیز ریٹرن کرنے کا عموماً ملکوں میں، سنا ہوگا آپ نے، ایسا ادھر بھی ہے۔ واللہ کہ بعض دفعہ یہی سوچ شادی کے لیے بھی ہے، سوری آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی وانٹ ٹو ریٹرن دس، تو ریٹرن آئٹم کہاں جاتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے۔ ریٹرن کرنے والا اور ریٹرنر دونوں ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اپنے صبر اور شکر کے ساتھ ان شوہروں کو دین پہ لے آؤ۔ اگر تمہارے شوہر نمازی نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، پہلے تو اپنا دین بھی تو دیکھو تم کتنے دین پہ ہو، اور جب آ جائے تو پھر اس جنت کی دعا کرو۔ آپ سوچیے کہ فطری سی بات ہے، انسان خوشی کا تصور لائے نا ذہن میں تو شوہر بیوی کا تصور آتا ہے، فطری سی بات ہے، اس میں کوئی غیر فطری بات نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کو پتا کیا ہے؟ آدم کو جنت میں بھیجا، کون سا رشتہ قائم ہوا؟ ماں آئی تھی، آدم کی بہن آئی تھی، بیوی۔ شوہر بیوی کا ساتھ فطری ساتھ ہے، ویسٹ نے اس کو بھی ضائع کروا دیا۔ شادی سے پہلے ہی اتنے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اس رشتے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو جب دنیا میں ساتھ دین کا کام کریں گے نا، پھر یہ خوشیاں وہاں پائیں گے۔ आपके हस्बैंड्स अगर दीन में आपको लगता है कि आपके मोविन नहीं है, तो ये आयतें उनको जाकर सुनाएं, और आप दिन ब दिन उतनी खूबसूरत बीवी बने कि जिनसे मोहब्बत की जाए। और मोहब्बत छीनी नहीं जाती, भीख भी नहीं ली जाती, मोहब्बत के लिए कुछ शो करना पड़ता है, किरदार, नरमी, खूबसूरती, केयर, प्यार। उनकी गर्म सर सह लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्नत में जब आप जाएं तो उस रिश्ते ने अब कभी नहीं टूटना। क्या वो जन्नत होगी? आप अपने अपना सोचिए, मैं भी थोड़ा सा अपना सोच लूं, पर आप मुझे सोचने ही नहीं दे रहे। लेकिन यकीन करें, असल खुशी वो है जो जन्नत तक साथ ले जाए, और वहां सब कुछ। ये नहीं कहा कि एक हफ्ते का पैकेज है, वापस कब जाना है। होटल में पहले दिन जब आप जाएं तो आप कहते हैं, वाह क्या होटल है। फिर दूसरे दिन जब हम थोड़ा सा गंदा कर देते हैं कमरा, तो हम कहते हैं, ओ अच्छा इस ओके। फिर हम होटल वालों पे नक्स निकालते हैं, ये सफाई नहीं करके जाते, किचन बाथरूम नहीं साफ करके। अब आप गए 5 दिन के लिए, और तीसरा दिन शुरू हो गया, उसके बाद क्या शुरू होता है? उल्टी गिनती, हाय 1.5 दिन रह गए। फिर आप चीजें समेटते हैं, अब कहते हैं क्या करना है, अब घोल के अब तो वापस जाना है। और अगर आपको कोई कह दे कि इस बड़े खूबसूरत होटल में अब तुम आए, अब ये हमेशा के लिए कमरा तुम्हें अलॉट कर दिया, जब मर्जी आओ, रहो ना रहो, चाबी तुम्हारे हाथ में, जब आओगे तुम्हें ये कमरा सजा हुआ मिलेगा, कैसा लगेगा? बोले तो अल्लाह आपको यही तो कह रहा है, जन्नत में आपको हमेशा के लिए अल्लाह घर दे रहा है। तो इसके लिए फिर हमेशा नेकियां करनी पड़ेंगी, सिर्फ रमजान में नहीं। और आगे अब हिजरतें, कुर्बानियां, मेहनतें, इताअत, और मुश्किल हालात में अल्लाह का बंदा बनना, ये कीमत है इस पैकेज की। ले सकते हैं, यू कैन अफोर्ड दिस, साइन कर दे। आप जिस दिन अल्लाह के इस पैकेज को साइन करेंगे ना, कहले मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं, हिजरत भी करनी पड़ी तो करूंगी, मेहनत भी करूंगी, इताअत भी करूंगी, मुश्किल आएगी तो सब्र करूंगी, वेले नहीं करूंगी, तो अल्लाह ताला आपको ये रिजल्ट आज ही देने को तैयार है। वतिलकल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमोहा, विरासत में मिलेगी जन्नत, क्योंकि हमारे माँ बाप वहीं से निकाले गए थे, और अमलों का विरसा भी है, जैसे अमल वैसी जन्नत। बिमा कुंतुम तामलून, इसके बरक्स अब एक और किरदार है। दिल तो नहीं चाहता कि जन्नत के फौरन बाद पढ़े, लेकिन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये फितरत का असूल है। और वो क्या है? इन्नल मुजरिमीन फी असाबी जहन्नम खालिदून, रहे मुजरिम तो वो हमेशा जहन्नम के अजाब में मुब्तला रहेंगे, कभी इनके अजाब में कमी ना होगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, दुआ कीजिए अल्लाह हमें इस बुरे अंजाम से बचा ले। वो इसमें मायूस पड़े होंगे, इन पर हमने जुल्म नहीं किया, क्योंकि एकदम हमारी हमदर्दियां उनके साथ जाने लगी ना, हाय बेचारे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो बेचारे नहीं है, हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वो तो खुद अपने ऊपर जुल्म करते रहे। वो पुकारेंगे, हाईलाइट कीजिएगा, या मालिक लियक्ति अलैना रब्बुक, ए मालिक तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। ये मालिक कौन है? जहन्नम का दारोगा, गार्ड मैन ऑफ दी हेल, उसका नाम मालिक है। और क्या कह रहे? तेरा रब, यहां से पता चल रहा है कि अपना नहीं समझा रब को। कहते हैं अपने रब को एक हमारी तरफ से पर्ची भेज दो कि हमें मार दे, हम रोज जी के रोज मर के थक गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ला यमू तू नफी हा वला याह्या, न जिएंगे ना मरेंगे। फिर आप सूरह मुदस्सिर में पढ़ेंगे जहन्नम की खूबी, ला तुबकी वला तजर, ना वो बाकी छोड़ती है ना मारती है, रोज जीते हैं रोज मरते हैं। कहेंगे मालिक जरा अल्लाह को एक मैसेज दे दो कि हमें मार दे, हम मरना चाहते हैं। वो जवाब देगा, इन्नकुमा किसोन, तुम यूं ही पड़े रहोगे, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे, मगर तुम में से अक्सर को हक ही ना गवार था। आयत पे गौर कीजिए, क्या जुर्म है इनका? हक आया, कबूल ना किया, पसंद नहीं था, दे डोंट लाइक दैट। तो अब जहन्नम पसंद है कि नहीं, आपको इधर ही रहना पड़ेगा। क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया? अच्छा तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। क्या उन्होंने ये समझ रखा कि हम इनकी राज की बातें और इनकी सरगोशियां नहीं सुनते? हम सब कुछ सुन रहे हैं, और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं तन्हाई की बातें, बाद के दुख सुख। अल्लाह कहते हैं हम सब सुनते हैं, بلکہ لکھ بھی رہے ہیں, نوٹس بھی لے رہے ہیں فرشتے. ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک آسمان اور زمین کا فرما روا, عرش کا مالک, ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا, انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو, یہاں تک کہ اپنا وہ دن بھی دیکھ لیں جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا, اور وہی حکیم و علیم ہے, بہت بالا برتر ہے وہ, جس کے قبضے میں زمین و آسمانوں اور اس کی ہر چیز کی بادشاہی ہے, جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے, اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے, اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. امیجن کیجیے, سب کو اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں جا کر پیشی دینی ہے. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے, الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب, یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے تھے. سوچئے کہ اس آیت کو, مان کر نہیں دیتے تھے, باقی باتوں کو تو پیچھے کر دیں. کرو کیا ان کے ساتھ, فاسفخنہم وقل سلام, پس اے نبی ان سے درگزر کیجیے اور کہہ دیجیے کہ سلام ہے تمہیں, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا کہ کس کا انجام اچھا اور کس کا برا. تو یہ تھی سورت زخرف, آئیے تلاوت کرتے ہیں مل کر آیت 74 سے 80 تک. أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے.